नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए वीकेंड पॉडकास्ट में सियासी किस्सा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कहने के बाद कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए भाजपा के वैचारिक पूर्वजों पर अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोमवार को एक एक्स पोस्ट में लिखा, मोदी शाह के वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में महात्मा गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। हर कोई जानता है कि कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग से गठबंधन कर बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकारें बनाई थी। सवाल उठता है कि क्या खड़गे के दावे ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं। आइए जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अधीन 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। कुल 1585 प्रांतीय विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 711 जीतने में सफल रही थी। 11 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। बम्बई में 175 में से 86 सीटें पूर्ण बहुमत से बस थोड़ा ही कम सीटों पर जीत हासिल की थी। इन सभी प्रांतों में कांग्रेस सरकारों का गठन हुआ। कुछ समय बाद कांग्रेस ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस व असम में भी सरकारें बनाई। शेष बचे 3 प्रांतों सिंध, पंजाब तथा बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन किया गया। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। पंजाब में सिकंदर हयात खान की यूनियस्ट पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी। वहीं बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। बावजूद इसके कि कांग्रेस 54 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करने वाली मुस्लिम लीग चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन किया था। लीग अलग निर्वाचक मंडलों के तहत मुसलमानों को आवंटित 482 सीटों में से सिर्फ 106 सीटें जीत सकी थी। वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। पंजाब में 84 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से वो केवल 2 सीटें ही जीत सकी और सिंध में 33 में से केवल 3 सीटें ही जीत सकी। ये सभी मुस्लिम बहुल प्रांत थे। हिंदू महासभा, जो 1930 के दशक में विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में चुनावी राजनीति में आई थी, भी हार गई। कई विद्वानों ने लिखा है कि लीग और महासभा की राजनीति और विचारधारा एक दूसरे की परछाई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, भले ही यह अजीब लगे लेकिन मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के मुद्दे पर एक दूसरे के विरुद्ध होने के बजाय इस पर पूरी तरह से सहमत हैं। दोनों न केवल सहमत हैं बल्कि जोर देते हैं कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। यह वैचारिक मिलन जल्द ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक गठबंधनों में बदलने वाला था। हालांकि उसकी उम्र बहुत कम रहने वाली थी। सितंबर 1939 में वायसराय लिन थियोगो ने चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों से बिना कोई परामर्श किए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वायसराय के इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस ने मांग रखी कि भारत युद्ध में ब्रिटेन की मदद तभी करेगा जब ये वादा किया जाए कि युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की घोषणा की जाएगी। लिन लिथिगो ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने विरोध स्वरूप इस्तीफों की झड़ी लगा दी। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी सभी ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इस्तीफे से प्रांतों में व्यापक राजनीतिक उथल पुथल मच गई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने कांग्रेस के सत्ता छोड़ने के फैसले में एक राजनीतिक मौके को देखा और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा बनने के लिए जल्दबाजी दिखाई। आखिरकार उन्होंने 2 प्रांतों सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में गठबंधन किया। बंगाल में हिंदू महासभा ने मुस्लिम सांप्रदायिकतावादी फजलुल हक और उनकी पार्टी केपीपी का समर्थन किया। फजलुल हक पहले मुस्लिम लीग के नेता थे और विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। दिलचस्प बात है कि सुभाष चंद्र बोस की बनाई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी तब हिंदू महासभा और केपीपी के गठबंधन का समर्थन किया। महासभा में प्रमुख वैचारिक और राजनीतिक व्यक्ति सावरकर ने इन गठबंधनों को उचित ठहराया था। कानपुर में 1942 के हिंदू महासभा अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय संबोधन में सावरकर ने सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाने का गर्व से जिक्र किया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।